लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क, लोकतंत्र के सिद्धांत में चाहे जितनी अच्छाइयां हों पर इसमें संदेह नहीं कि अमल में इसमें अनेक बुराइयां भी हैं। इसके समर्थकों ने आरंभ में इससे जो आशाएं की थीं वे पूरी नहीं हुई। लोकतंत्र की जो अनेक आलोचनाएं उसके शत्रुओं और मित्रों दोनों के द्वारा की गई हैं उनका मूल्यांकन हम इस समय नहीं करेंगे। हम केवल उनके महत्व के अनुसार उनकी चर्चा करेंगे। पहला, आरंभ में लोकतंत्र कुलीन वर्गीय प्रहार था। बहुत से लोगों का विचार था कि लोकतंत्र का मतलब उत्तरदायित्वहीन भीड़ का शासन है, अरस्तु लोकतंत्र को संवैधानिक शासन का भ्रष्ट रूप मानते थे। मिल बहुसंख्यकों की निरंकुशता से भयभीत थे। लेकी का विचार था कि लोकतंत्र स्वतंत्रता के विरुद्ध है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या को जरूर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मत गिने जाते हैं, परखे नहीं जाते। विशेष प्रशिक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और विशेषज्ञता को बहुत कम महत्व दिया जाता है। हर व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति के बराबर मानना ही लोकतंत्र का आधार है। अमल में इसका नतीजा यह होता है कि शासन की बागडोर अनजान, अशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है। लोकतंत्र संख्या को बहुत अधिक महत्व देता है। इसमें लोगों के सिर पर ही गिने जाते हैं और इस बात की चिंता नहीं की जाती कि खोपड़ियों के भीतर क्या है। लोकतंत्र भीड़ का शासन है। यह सामान्यतः और हीनता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में बहुमत सबसे ऊपर होता है। भले ही बहुमत को अल्पमत से थोड़े ही मत अधिक मिले हों, अल्पमत के पास अधिक ज्ञान और विवेक हो तो भी उसकी अवहेलना की जाती है। लोकतंत्र में प्रभावपूर्ण जिम्मेदारी लागू करना कठिन है। आम चुनाव, छोटा कार्यकाल और बारी बारी से पदाधिकारी आदि से जिम्मेदारी की भावना लाने में सहायता नहीं मिलती। लोकतंत्र का अर्थ सामान्य व्यक्तियों द्वारा अर्थात सीमित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा शासन है। इसमें भीड़ मनोवृत्ति को पूरा पूरा अवसर दिया जाता है, अर्थात चंचल बुद्धि वाले, गैर जिम्मेदार भावावेश में बह जाने वाले और बुद्धिहीन लोगों को शासन करने का इसमें पूरा पूरा अवसर रहता है। संक्षेप में लोकतंत्र का मतलब अज्ञात शासन है। दूसरा, कुछ अन्य लोगों का कहना है कि लोकतंत्र का परिणाम होता है निकृष्ट कोटि का अल्पतंत्र। टेलीरेड लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र मानते हैं। लोकतंत्र में अधिकार सत्ता जनता को प्रभावित करने वाले चतुर व्यक्तियों, इधर उधर दांव पेच करने वाले और पार्टियों के नेताओं के हाथों में रहती है। उच्च कोटि के नेता नहीं चुने जाते। लोग अपने से अच्छे लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए वे समर्थ व्यक्तियों के बजाय जनप्रिय लोगों को अपना नेता चुनते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जबकि लोगों ने वुडो विल्सन और वेंजोला जैसे उच्च कोटि के व्यक्तियों को अस्वीकार करके मध्यम और निम्न कोटि के ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया जो अपने को लोकप्रिय बनाने में बहुत चतुर थे। इससे यह साबित होता है कि लोकतंत्र में नेता बनने के लिए अपेक्षित गुण यही है कि वह एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हो, समझौता कर सकने वाला हो और जरूरत पड़ने पर स्वयं अपने सिद्धांतों को छोड़ सकता हो। प्राय समर्थ और खामोश व्यक्ति पीछे छोड़ दिए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े ही नहीं होते। लोकतंत्र के विरुद्ध लिखते हुए मैक्सी कहते हैं कि लोकतंत्र बड़ी आसानी से उत्तेजनात्मक प्रचार, नेतागिरी और दबाव डालने वाली कुटिल राजनीति का शिकार हो जाता है। लोकतंत्र के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि साधारण मतदाता को राज्य के मसलों में कोई रुचि नहीं होती। जिन विषयों पर विवाद होता है उनमें से अनेक विषयों के बारे में कोई लोकसम्मति या सामान्य दृष्टिकोण नहीं होता। अनेक लोकतंत्रीय देशों में मतदाताओं की उदासीनता प्रसिद्ध है। जब कभी कोई चुनाव होता है तब लोगों को उनके कार्यालयों आदि से जबरदस्ती मत देने के लिए लाया जाता है। यह हिसाब लगाया गया है कि अमेरिका में मताधिकार प्राप्त लोगों से लगभग 50% ही वोट देते हैं। अमेरिका के एक राज्य में किसी एक चुनाव में केवल 6% मतदाताओं ने वोट दिए थे। उस उदासीनता का नतीजा यह होता है कि कुछ ऐसे अविवेकी लोगों के हाथों में शक्ति चली जाती है जो लंबे चौड़े वादों और झूठी सच्ची बातों से जनता को बहलाने और उचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तीसरा, इसी तर्क से मिलता जुलता एक दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि अमल में लोकतंत्र का मतलब है राजनीतिक दलबंदी से पैदा होने वाली बुराइयां। वास्तव में राजनीतिक पार्टी का शासन उन थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है जिनका पार्टी में बोलबाला रहता है। इसका मतलब होता है अल्पतंत्र लोकतंत्र के लिए पार्टी व्यवस्था अनिवार्य है, पर इसमें पहला खोखलेपन और असत्य को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, राष्ट्रीय विवादों को स्थानीय चुनाव में ही घसीट लिया जाता है। तीसरा, लूट खसोट की प्रथा पनपती है। चौथा, नैतिक मानदंडों का पतन होता है। पार्टी का संचालन इतनी कड़ाई से किया जाता है कि जो व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करना चाहता है उसे ऐसा या तो करने ही नहीं दिया जाता या बहुत ही कम करने दिया जाता है। उसे दो या अधिक ऐसे उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना होता है जो या तो दुष्ट या तो मूर्ख होते हैं और जिनमें किसी एक की भी वह पसंद नहीं करता। उसे अपना निर्णय दो या तीन ऐसे मसलों को लेकर करना होता है जिनसे किसी एक का भी वह समर्थन नहीं करता। A.R. लॉर्ड का कहना है कि प्रतिनिधित्व के आलोचकों को पार्टी प्रणाली लोगों की राय जानने के लिए इतनी अधिक यांत्रिक जान पड़ती है कि उसमें किसी भी अंश में सार्वजनिक इच्छा का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। चौथा, फ्रांसीसी लेखक फेगवे लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना बताते हैं। यही विचार कुछ ऐसे और लोगों का भी है जिनके हृदय में लोकतंत्र के विरुद्ध कोई विशेष द्वेष नहीं है। कुछ लोग तो खुलेआम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब गैर जिम्मेदारी सरकार है। वे यह भी कहते हैं कि लोकतंत्र स्वस्थ नीति यही अपना सकता है। लोकतंत्र योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाने में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, वैदेशिक संबंध में और कूटनीतिक मसलों में खासतौर पर बहुत कमजोर रहता है। लोकतंत्र तो नौसिखियों का या पूर्णतः अपरिपक्व लोगों का शासन है। लोकतंत्र का आधार बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि इसका आधार सामान्य भीड़ है। तो जो अकृष्ट सभा भावुक होती है और भावना की बार में बह जाती है। साधारण लोग बहुत अधिक तर्क वितर्क नहीं करते। आज वे किसी व्यक्ति की प्रशंसा करके उसे आसमान पर चढ़ा सकते हैं तो दूसरे दिन उसे गंदी नाली में ढकेलने को तैयार हो जाते हैं। सिद्धांतों और व्यक्ति दोनों के ही बारे में उनके विचार अस्थिर और चंचल होते हैं। उनके सामने एक स्थायी आदर्श नहीं रहता। कभी तो वे आदर्श से प्रभावित रहते हैं और कभी वे अपने नेता के कहने पर आकर आदर्श के विपरीत कार्य करते हैं। कभी वे प्रगतिवादी होते हैं और कभी सुधार विरोधी बन जाते हैं और सभी प्रकार की प्रगति का विरोध करते हैं। वे सक्रिय बुद्धि के होते हैं। पांचवा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र का विरोध करने वाला कहना होगा कि लोग भेड़ों, बंदरों और भेड़ियों की मनोवृत्ति वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सहज ही विश्वास कर लेने वाले, भावावेश में बह जाने वाले, डरपोक, असहनशील, अविवेकी, निर्दयी, अन्यायी, मूर्ख आदि सब कुछ होते हैं। केवल विचारवान नहीं होते, यह भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय सरकार की प्रवृत्ति निश्चयहीनता, दुर्बलता, अस्थिरता और मूर्खता की होती है, और इसका कारण जनता की चंचलता, विचार शून्यता और अरुचि है। छेवा, लोकतंत्र के समर्थक इसे जनता का शासन बतलाते हैं, परंतु आलोचक पूछते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा ही है। वे कौन लोग हैं जिन्हें बुद्धिमत्ता, न्याय और शक्ति का मूर्त रूप माना जा सकता है? क्या इसका मतलब निर्वाचकों के बहुमत से है? यदि यही बात है तो उन लोगों को हम क्या उत्तर दे सकते हैं जिनका यह कहना है कि यह जरूरी नहीं कि मतदाताओं का बहुमत जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व करे। ब्रिटेन में निर्दलीय पद्धति के कारण और दूसरे देशों में प्रचलित गुट पद्धति के कारण जो लोग शासन करते हैं, वे वास्तव में बहुधा अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि बहुमत का। यदि यह मान भी लिया जाए कि मतदाताओं के बहुमत का मतलब देश के बहुसंख्यक लोगों का मत है, तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह जरूरी है कि बहुमत ठीक हो? बहुत संभव है कि जनता की आवाज़ शैतान की आवाज़ हो। यह समझना गलत है कि प्रतिनिधि सदा जनता की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जाने या अनजाने में जनता की इच्छा के विपरीत रास्ता अपना सकते हैं और जनता की इच्छा का गलत प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे हमेशा स्वतंत्र नहीं रहते, पार्टी के अनुशासन का अंकुश उन पर हमेशा रहता है, और वे अपने निर्वाचकों की अपेक्षा कभी कभी समाचार पत्रों और निहित स्वार्थों से अधिक डरते हैं। सातवां, लोकतंत्र के विरुद्ध फेगवे एक जोरदार दलील यह देता है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से लोकतंत्र अनुपयुक्त है। उनकी आलोचना का मतलब यह है कि लोकतंत्र का विकास की प्रक्रिया से मेल नहीं बैठता। उनका कहना है कि विकास क्रम में हम ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते हैं, हमें अधिकाधिक मात्रा में केंद्रीयकरण मिलता है। शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न कार्य सौंप दिए जाते हैं। लोकतंत्र विकास विरोधी है क्योंकि उसमें कोई केंद्रीय तंत्रिका व्यवस्था नहीं है। शरीर के एक अंग मस्तिष्क को एक निश्चित स्थान पर मानकर और उसे ही समूचे शरीर के लिए विचार करने और योजना बनाने का कार्य ना सौंप कर लोकतंत्र में यह आशा की जाती है कि मस्तिष्क कहीं भी हो और कहीं हो सकता है। सीधे साधे शब्दों में फेगवे का मतलब है कि शासन का काम थोड़े से बुद्धिमानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और बाकी लोगों को उनकी आज्ञा को चुपचाप मानते रहना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का वह बहुत ज़्यादा विकेंद्रीयकरण और एकदम असमर्थता लगाते हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से लोकतंत्र का विरोध करने वाले कभी कभी यह दावा करते हैं कि गोरी जातियों की अपेक्षा गैर गोरी जातियां लोकतंत्र को अपनाने में अधिक असमर्थ होती हैं। आठवां, लोकतंत्र के एक विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही खर्चीली शासन प्रणाली है। लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र लोकमत का निर्माण, प्रचार और बार बार चुनाव, इन सब कार्यों में बहुत खर्च होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में हर चौथे साल राष्ट्रपति चुनावों में लाखों डॉलर खर्च हो जाते हैं। सीनेट ने एक सदस्य के चुनाव में ही $5,00,000 खर्च हुए थे, जो धन रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए वह चुनाव प्रतियोगिता में और निर्वाचन क्षेत्र को अनुकूल बनाने में व्यय किया जाता है। लोकतंत्र में धन की बर्बादी एक ऐसी असलियत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें धन की ही नहीं, समय और अवसर की भी बर्बादी होती है। एक आधुनिक लेखक ने लोकतंत्र को एक लंबी चौड़ी समिति बतलाया है और समिति की परिभाषा हास्यजनक ढंग से यह दी है कि जो काम एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है, वही काम सात व्यक्तियों द्वारा सात दिन में किए जाने का नाम समिति है। यह परिभाषा लोकतंत्र में निहित अपव्यय को प्रकट करती है। संसदात्मक सरकार का काम बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि उसे लोगों को समझा बुझा कर बहुमत को अपने पक्ष में बनाना होता है। मैक्सी का कहना है कि कुछ विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे अधिक अकुशल और खर्चीला, सबसे अधिक दलबंदी और सहनशीलता से भरा हुआ और प्रगति का सबसे अधिक विरोधी या उसकी ओर से उदासीन रहता है। कुछ लोगों ने लोकतंत्र के नैतिक महत्व पर भी गंभीर आशंका प्रकट की है। आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में हमेशा असत्य की धूम रहती है। का कहता है कि ख झूठा है और ख इसका जवाब क को और भी झूठा कहकर देता है। जनता को प्रभावित करने के लिए समस्याओं को गवारा रूप देकर जनप्रिय बनाया जाता है। शांति और संतुलित ढंग से समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता, उन पर इस ढंग से विवाद किया जाता है जिससे अधिक मत मिल सके। सत्य या न्याय का बहुत कम अथवा बिल्कुल ही ख्याल नहीं किया जाता। वोटों द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लोकतंत्र की सामान्य बुराइयां बतलाया जाता है। ब्राइस ने राजनीति में धन का बल शीर्षक अध्याय में कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ में सामने सिर झुका दिया। यह बुराई आजकल कम हो रही है, फिर भी भारत में स्वाधीनता के बाद से अवैध आमदनी के अवसर बढ़ गए हैं और इसलिए उन अवसरों से लाभ उठाने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। दसवां, लोकतंत्र के विरुद्ध एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि यह शिक्षा के बजाय अशिक्षा या कुशिक्षा का साधन है। इसमें जनता की चापलूसी की जाती है। इससे जनता में एक अभिमानी सर्वहारा वर्ग बन जाता है। इसमें जनता के दोषों को जनता से ही छिपाया जाता है। जनता में समानता की एक झूठी भावना पैदा की जाती है। कोई हर व्यक्ति हर यह सोचता है कि अपने देश के शासन के लिए वह उतना योग्य ही है जितना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। लोकतंत्र में किसी विशेष प्रयास या प्रशिक्षण की जरूरत नहीं समझी जाती। इससे मापदंड गिर जाता है। लोग अपने को विज्ञान, साहित्य और कला का पारखी समझने लगते हैं। भीड़ मनोवृत्ति को उकसाया जाता है और जनता की ओछी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर जनता शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और कला के विकास में यदि विरोधी नहीं होती तो उस ओर से उदासीन जरूर रहती। लोकतंत्र से जिस सभ्यता का निर्माण होता है वह तुच्छ, साधारण या जड़ सभ्यता होती है। लोकतंत्रीय देशों में अधिक से अधिक लोगों को लिखना पढ़ना तो जरूर सिखाया जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उन देशों को जनता बुद्धिमान हो जाती है और ठीक प्रकार से सोचने समझने लगती है। आजकल सोचने विचारने के स्थान पर अधिकाधिक पढ़ने की प्रवृत्ति है। लॉर्ड ब्राइस का कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस लोकतंत्र में केवल पढ़ना ही सिखाया जाता है और सोचना तथा निर्णय करना नहीं सिखाया जाता, उसे पढ़ने की सामर्थ्य से कोई लाभ नहीं हो सकता। लोकतंत्र के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया जाता है कि स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का मित्र नहीं है। इससे हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल के वर्षों में अमेरिका का मैकार्थीवाद है। अनेक आलोचकों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि लोकतंत्र में ऐसे कानूनों की संख्या अधिक होती है जो बिना अच्छी तरह सोचे विचारे जल्दीबाजी में बनाए जाते हैं। एक औसत प्रतिनिधि बहुधा यह सोचता है कि अपने अस्तित्व का औचित्य साबित करने का केवल यही तरीका है कि उसके नाम से कोई ना कोई नया परिनियम पुस्तकों में दर्ज हो। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि ऐसा कोई कानून पहले कभी बन चुका है या नहीं, या यह बहुत जरूरी और उचित है या नहीं, और यह लागू हो सकेगा या नहीं। उसे केवल वाहवाही लूटने और जिन लोगों ने उसे अपना प्रतिनिधि चुना है उनके सम्मुख अपने को योग्य साबित करने की चिंता रहती है। निस्संदेह आधुनिक विधायिका में नए नए कानून बनाने की एक धुन सी रहती है। 12. लोकतंत्रीय देशों में अनेक उदाहरण हैं जब राष्ट्रीय हितों को स्थानीय हितों के लिए बलिदान किया गया। शक्ति और अधिकार की होर में कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए समूचे राष्ट्र के हितों की उपेक्षा की जाती है। जो कुछ मिल सके उसी को छीनने झपटने की प्रतिनिधियों में आपस में होर लगी रहती है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि राष्ट्र के हितों पर उसका क्या असर पड़ेगा। उनका उद्देश्य केवल अपने निर्वाचकों समुदाय का समर्थन पाना होता है। समूची जनता के हितों का ध्यान तो किसी का काम ही नहीं होता। सामुदायिकता की भावना का अभाव रहता है। इससे राष्ट्रीयता एकता संकट में पड़ जाती है। पश्चिम देशों में एक प्रवृत्ति और अधिक जोर पकड़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति है कि संगठित अल्पसंख्यक समुदाय अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनहित की अवहेलना करते हैं। कुछ समय पूर्व भारत में राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के प्रश्न को लेकर जो बवंडर उठा था वह इस बात का उदाहरण है कि किस तरह कुछ थोड़े से लोगों ने जब सब पर हावी होने की कोशिश की है तब देश का एक भाग दूसरे भाग के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देता है। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में पाई जाने वाली बुराइयों का निचोड़ ब्राइस ने यह बताता है का प्रशासन और विधान को दूषित करने में धन की शक्ति, ख राजनीति को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति, ग प्रशासन और पर जरूरत से अधिक खर्च, घ समानता के सिद्धांत का दुरुपयोग और प्रशासकीय कौशल, च पार्टी संगठन की बहुत ज्यादा अधिकार शक्ति।